ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये शन्वतां सुकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्त हि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। वर्ल्ड होली नेम भी चर्चा हो रही है। होली नेम पे कितने लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग जानते हैं। होली नेम से यहां क्या तात्पर्य है हमारा। होली नेम की बात करते हैं, होली नेम का अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। होली मीन्स पवित्र और नेम मीन्स नाम। तो भगवान का पवित्र नाम। कृष्ण कहना पवित्र नहीं है क्या? आप कौन से मंत्र का जप करते हैं जरा बोलिए जोर से सब लोग। उसमें जो शब्द आ रहा है हरे, दूसरा शब्द आ रहा है कृष्ण और तीसरा शब्द आ रहा है राम। हरे का अर्थ क्या है? हरे का अर्थ है भगवान की अटेंसी। भक्ति विनोद ठाकुर, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने महामंत्र की व्याख्या की है। क्या कहते हैं वो? हरे शब्द कितनी बार आया है और कृष्ण शब्द राम शब्द? तो कहते हैं कि जो पहला हरे है, जो पहला शब्द हरे है वो क्या है? मच्चित्तम हित्वा भवबोधन मुचाए, कि मेरे चित्त को हरकर मुझे भव बंधन से विमुक्त कर दीजिए। बेसिकली हरे शब्द इस्तेमाल हो रहा है राधा जी के लिए। राधा जी की कृष्ण के प्रति क्वालिटी क्या है? कृष्ण क्या कहलाते हैं? मदन मोहन क्या कहलाते हैं? अर्थ क्या हुआ? मदन कौन है? जिन्होंने कामदेव को भी मोह लिया है वो कृष्ण का नाम हो गया मदन मोह। अब जो कृष्ण को मोह लेती है उनका नाम क्या हुआ? मदन मोहन मोहिनी। इन्होंने कृष्ण को भी मोह लिया तो उन्हीं राधा जी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हर लेना। हरना, हरना मीन्स उसके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर देनी, उस पर अपना स्वामित्व स्थापित कर देना, अर्थात उनके मन को हर लेना। तो हर शब्द जो है, जो हरा शब्द है, उसको जब हम वोकेटिव सेंस में यूज करते हैं तो हरे कहलाता है। जैसे अंबा को अंबे कहते हैं, अंबा को अंबे कहते हैं कि नहीं कहते, इसी तरह जो है हरा शब्द को हरे के नाम से पुकारा जाता है। कह रहे कि मेरे चित्त को हर कर। अब हम किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? वो राधा जी जो कृष्ण के भी चित्त को हर लेती हैं, हम उन राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे चित्त को हर के मुझे भव बंधन से विमुक्त कर दीजिए। अब आता है दूसरा शब्द, क्या है? कृष्ण मत चित्तम कर्षह। हे कृष्ण, मेरे चंचल चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। आप मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा सुनते हैं और प्रसाद पाते हैं, तो अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। ये तो अल्टीमेट एम है ना। कृष्ण प्रेम हो जाए तो कृष्ण के धाम में प्रवेश आसानी से हो जाएगा। अब आपको चाहिए कृष्ण का प्रेम, तो प्रेम के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कृष्ण की ओर आकर्षित होंगे तभी तो उनसे प्रेम होगा। जब तक उनके प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो उनसे प्रेम कैसे होगा? कोई भी लड़का लड़की से प्रेम तभी करता है जब उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे चंचल चित्त को, चंचल क्योंकि आपका चित्त जो है, आपका मन जो है अभी भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित है, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे चित्त को कृपया अपनी ओर आकर्षित कर। फिर शब्द आता है हरे, दूसरी बार क्या आया? स्वमाधुर्येन मच्चित्त हर, कि आप अपने, राधा जी से कह रहे हैं कि आप अपने स्वाभाविक माधुर्य से मेरे चित्त को हर लीजिए। राधा जी ऐश्वर्यमयी है कि माधुर्यमयी? ऐश्वर्यमयी कौन है? द्वारका की महिषी। तो राधा जी जो है माधुर्य, माधुर्य भी क्या है? मिठास। माधुर्य किसे कहते हैं? मिठास को। तो राधा जी में जो मिठास है, जो माधुर्य है, उसे हम कहते हैं कि वो आपका स्वाभाविक है, नेचर है आपकी। तो आप उस स्वाभाविक माधुर्य से मेरे चित्त को हर लीजिए। फिर आती है चर्चा, फिर कृष्ण शब्द आता है। स्वभक्त द्वारा भजन ज्ञानेन ज्ञान दानेन मच्चित्तम शोधय। हे कृष्ण, भक्ति तत्व वेता अपने भक्त के द्वारा अपने भजन का ज्ञान देके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। अब चित्त में जो अगड़म बगड़म भरा हुआ है, मन में जो अगड़म बगड़म भरा हुआ है, हम कहते हैं ना चैंटिंग करते हैं जी, मन को भगवान में कम लगता है, दुनिया भर की बातें ज्यादा याद आती हैं, ऐसा फील होता है कि नहीं होता? एम आई राइट? अब वो जो अगड़म बगड़म भरा हुआ है मन के अंदर, तो हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको निकाल दीजिए। जब वो निकल जाएगा तो आपका नाम उसमें भर जाएगा। आप एक पानी की बोतल लीजिए और पानी के टब में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, खाली बोतल है पानी में डाल दीजिए। अब क्या होता है? बुलबुले निकलते हैं, अर्थात हवा बाहर निकलती है और पानी भरता जाता है। अब हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का प्रेम है, भगवान का आकर्षण है, भगवान की छवि है, वो आपके मन के अंदर तभी स्थापित हो जाएगी जब अगड़म बगड़म बाहर निकलेगा। तो हम कहते हैं वो रुक जाए और ये भी आ जाए, दोनों चीजें एक साथ कैसे आ सकती, आ जाएंगी क्या? एक तो निकलेगा तभी तो दूसरा आएगा, जगह तो उतनी है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है भजन का ज्ञान देके मेरे चित्त को शुद्ध बना दीजिए। अब फिर शब्द आता है कृष्ण दोबारा से, उसका अर्थ क्या है? नाम रूप गुण लीला दिशु मनिष्ठाम कुरु, अपने नाम रूप गुण लीला आदि वो मेरी निष्ठा बना दीजिए कि मेरा आकर्षण मेरा प्रेम केवल आपके नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति हो और किसी के प्रति ना हो, संसार के प्रति ना हो। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी निष्ठा जो है उसमें स्थापित कर दीजिए। फिर शब्द आया कृष्ण, रुचि भवतु मे, हे कृष्ण आपके नाम रूप गुण लीला धाम में मेरी रुचि हो जाए। जब आप पढ़ते हैं 9 स्टेप्स टू कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है? दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा अर्थनिवृत्ति के बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, रुचि के बाद फिर आसक्ति भाव और। तो अब वो निष्ठा से ऊपर उठ के जो है रुचि पे आ गए कि आपका नाम गुण रूप लीला धाम में मेरी रुचि हो जाए। अब फिर आता है शब्द हरे, निज सेवा योग्य माम गुरु, हे हरे मुझे आप अपनी सेवा के योग्य बना दीजिए। क्या आप भगवान की सेवा करने के योग्य हैं? योग्यता भी तो हासिल करनी पड़ेगी। योग्यता क्या है? भगवान की सेवा करनी है, राधा जी की सेवा करनी है, तो उसके लिए बेसिक योग्यता क्या है? बेसिक योग्यता, सबसे आधारभूत योग्यता जो है क्या है जिससे कि आप भगवान की सेवा में लग सके, बताइए। बताइए अपने को दासानुदास मानकर। वो दासानुदास क्या है? शरणागति क्या है? वह बहुत ऊंचा 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 चढ़ते जा रहे। नर्सरी क्लास की बात करो। नहीं नहीं नहीं, बेसिक बात, बिल्कुल बेसिक बात। ऊंची बातें, अब यहां ऊंची बातों में नहीं आ रहे, हम बेसिक बात करते हैं। आप कहते हो एक सेवक योग्य है और एक सेवक अयोग्य है, उसकी योग्यता क्या है? कि वो स्वामी के कहने पर चलता है। योग्यता क्या है? कि स्वामी के कहने पर चलना, अपील नहीं, दलील नहीं, इफ नहीं, किंतु नहीं, लेकिन नहीं, परंतु नहीं, बट नहीं, कुछ नहीं, जो आपने कहा मैंने माना, बस बात खत्म। अच्छा सेवक है जो उसमें मीन मेख निकालेगा, ये नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, भैया बेकार आदमी, परे करो, परे करो, कोई फायदा नहीं। तो बेसिक योग्यता क्या है? कि जैसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसी सेवा चाहिए वैसी करी जाए, पर इंस्ट्रक्शंस देगा कौन? वो आती बात दासानुदास, कि भगवान के दास अर्थात जो आपके गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनसे आप इंस्ट्रक्शन लेते हो कि मुझे राधा जी की, कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे करनी है। वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसको बिना लेकिन किंतु परंतु मान लेते हो, उस पर मीन मेख नहीं निकालते, उस पर कोई अपना दखल नहीं करते। आपने कही और हमने मानी, बस सिंपल भाषा, तब तो आप वो योग्य। आपने कही और हमने उसमें नमक मिर्च और लगा दी, 4-6 बातें ऐड कर दी, 2-4 बातें निकाल दी, तो आप अयोग्य बनोगे कि अयोग्य बनोगे? तो तो आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा के योग्य बना दीजिए, अर्थात मेरे मन में ऐसी शक्ति भरिए कि मैं अपने गुरु के आदेश का अक्षरश पालन कर सकूं। एज इट इज, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आता है हरे स्वसेवाम देशय। अब सेवा के योग्य तो बना दिया, आपने प्रार्थना करी और आपको उन्होंने कहा ठीक है अब तुम मेरी सेवा के योग्य हो, एग्रीड, मान ली बात। अब अगला स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अरे आदेश तो दो, करने क्या है? योग्यता तो आ गई मेरे पास, अब आदेश तो मिलना चाहिए कि मुझे सेवा पे करना क्या है। यहां कहते हैं हे हरे मुझे सेवा के योग्य बनाकर अपनी सेवा का आदेश दीजिए। अब आप आदेश प्राप्त करते हैं कि मुझे सेवा क्या करनी है। योग्यता हो गई, आई एग्री टू व्हाट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, जो इंस्ट्रक्शन दी मैं उनको पूरा करूंगा। पर इंस्ट्रक्शंस क्या है? व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? अब आप जो है उनसे इंस्ट्रक्शंस मांगते। फिर आता है हरे हरे राम। अब दूसरी लाइन है। अब यहां हरे का अर्थ क्या है? स्वपृष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीलाम श्रावय। अब आपने सेवा की पहली विधि क्या है? पहली विधि प्रहलाद महाराज ने 9 विधियां बताई हैं, उसमें पहली विधि क्या है? श्रवणम, अर्थात सुनना। क्या सुनना? फिल्मी गाने, निंदा चुगली, लड़ाई, सुनना क्या है? यहां कहते हैं कि अपने प्रियतम भक्तों सहित, अकेले नहीं, भक्तों के सहित मुझे अपनी अभिष्ट लीलाओं का श्रवण कराएं, अर्थात नाम रूप गुण लीला धाम इनका वर्णन जो है मेरे को श्रवण कराएं। यही आप सुबह करने आते, 8 बजे आप भागवतम क्लास में आते हैं तो किस लिए आते हैं? यही करने आते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण करें। राम, राम का अर्थ क्या है? पृष्ठाय सह स्वाभिष्ट लीलाम माम श्रावय। अर्थात यहां पे चर्चा आ रही है राम का अर्थ है राधिका रमण। आप अपनी प्रियतमा श्री राधिका जी के सहित गोलोक में श्री राधिका की सभा में मधुकंठ और सिद्ध कंठ के द्वारा मुझे अपनी अभिष्ट लीला का श्रवण कराइए। वह ऊंचा चढ़ रहे, ऊंचा क्या कह रहे हो कि गोलोक सभा में श्रवण कराओ, मतलब मुझे गोलोक ले जाओ। अब मेरे को यहां रहना मंजूर नहीं है, अब आप मुझे गोलोक ले जाइए, मतलब ऐसी योग्यता प्राप्त करिए जिससे मैं गोलोक जाने में समर्थ हो सकूं। और वहां पे गोपाल चंपू पढ़ेंगे ना, गोपाल चंपू में सारी व्याख्या दी है जीव गोस्वामी ने कि वहां जो है जो कथा चल रही है मधुकंठ सिद्ध कंठ कहते हैं, तो उनके द्वारा अपनी अभिष्ट लीला का श्रवण कराइए। फिर आता है शब्द हरे स्वपृष्ठेन सह स्वाभिष्ट लीला माम दर्शय। सुन तो मैंने लिया। अब एक बात बताइए, आपको ऑडियो अच्छा लगता है कि वीडियो अच्छा लगता है? ये कहते हैं वीडियो, कितने लोग इससे सहमत हैं? इसीलिए आजकल जो है जो आप टीवी देखते हैं तो पहले एड आया करती थी रेडियो में, अब क्या आती है? ऑडियो विजुअल, अर्थात दिखती भी है और सुनने को भी मिलती है। तो यहां पर जो है कहा जा रहा है कि हे हरे अर्थात हे श्रीमती राधिका, आप अपने प्रियतम कृष्ण के साथ आपकी जो लीलाएं तो चल रही हैं उनके दर्शन करा दीजिए। श्रील प्रभुपाद चैंटिंग के बारे में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण गौण है और सुनना मुख्य है। कान में आवाज जानी चाहिए और आपको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। जब आपका चैंटिंग प्योर लेवल पे होनी शुरू हो जाएगी, शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी, नाम अपराध कम हो जाएंगे, तो लीलाओं का स्मरण स्वतः ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। आपको याद करने की, भगवान की ये लीला थी, भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने ऐसे किया, उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम करते हैं तो कहते हैं कि अगर आप जो है कानों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, अर्थात शब्द पे कंसंट्रेट करेंगे, तो ग्रेजुअली लीलाएं जो हैं आपके समक्ष प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। अर्थात आप जो दर्शन करने की बात कर रहे हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम साफ हो जाएंगी, मन के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके हृदय के अंदर जो है लीलाओं का आविष्ट हो जाएगा। फिर शब्द आता है राम प्रेष्ठाय सह स्वाभिष्ट लीलाम माम दर्शय। अब आपने राधा जी से प्रार्थना करी, अब आप राधिका रमन से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी प्रियतमा के साथ, वहां प्रियतम के साथ था कि आप कृष्ण के साथ लीलाओं का दर्शन कराइए, यहां पर जो है आप कह रहे हैं कि आप अपनी प्रियतमा राधा जी के साथ जो आपने लीलाएं करी हैं उनका दर्शन करा दीजिए। फिर शब्द आता है राम नाम कुन रूप लीला स्वर्ण दिशु योजया। हे राधिका रमन जी, हे अंतरंग भक्तों के साथ क्रीड़ा करने वाले कृष्ण, आप मुझे कृपया करके अपने नाम रूप कुन लीला स्मरण आदि में समय के अनुसार अपनी सेवा के योग्य बना दीजिए। सेवा इसके अलावा अब और भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सेवाएं तो बढ़ती जा रही है ना, एक के बाद एक सेवाएं बढ़ती जा रही है। तो अभी आपने जो है सिर्फ एक सेवा मांगी थी श्रवण करने की, फिर मांगी आपने कि दर्शन भी हो जाए साथ साथ, अब आप बाकी सेवाओं की भी योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं। हम जब कहते हैं ना अजी जन्माष्टमी आ गई है ये सेवा करोगे, अरे प्रभु जी टाइम नहीं है, अरे रोज सोलह माला जपते हो, भगवान से सेवा मांगते हो, सेवा का अवसर आया तो कह दिया टाइम, क्या सेवा मांगे, क्या किया आपने, मतलब हिपोक्रेसी, कि मैं जो कह रहा हूं उसे करूंगा नहीं। सेवा मांगी 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 रोज मांग रहे, दे दी तो नहीं 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 नहीं, नहीं। सेवा चाहिए, हाँ 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 वो तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा, सेवा मिली ना 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 ना, तो ठीक रास्ता हुआ कि गलत रास्ता हुआ। अब आइए फिर कहते हैं राम तत्र माम निज सेवा योग्यम कुरु, अर्थात अपने अंतरंग भक्तों को सुख देने वाले श्याम सुंदर, आप मुझे अपने नाम गुण लीला स्मरण आदि में समय अनुसार अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन, अरे दे दो ना, अरे दे दो ना भाई, अरे दे दो ना, रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते है? आप जो है सेवा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ चीज मांगनी होती है तो आप कहते हो दे दो भाई दे दो भाई, किसी ने यहां जो है उसको पुनरुक्ति हो रही है, ये बार बार किया जा रहा है कि दे दीजिए दे दीजिए। फिर आता है शब्द हरे माम स्वांगी कृत्य रमस्व। ये राधा जी मुझ दीनहीन मलिन जन को अंगीकार करके मेरे साथ भी यथा योग्य क्रीड़ा कीजिए, मुझे भी अपनी लीलाओं का आनंद दीजिए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने के कारण क्या है, एक अंतरंग कारण है, एक बहिरंगा कारण है। बहिरंगा कारण क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य रानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजामि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में प्रकट होता हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने। ये तो दिख रहा है भगवान इस कार्य के लिए आ रहे हैं, परंतु अंतरंगा कारण क्या है? अंतरंगा कारण है जन्म कर्म जिमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। उन कर्मों में क्या आता है? भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए। भगवान भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते हैं, उसका आनंद देते हैं। तो यहां रिक्वेस्ट हो रही है कि मैं कौन हूं? दीनहीन, मलिन, मेरे अंदर गंदगी भरी हुई, मेरा मन साफ नहीं है। परंतु आपसे प्रार्थना है कि जब आपके साथ मुझे लीलाओं का आनंद मिलेगा तो मेरा शुद्धिकरण होता है। भगवान को तीन नाम हमने दिए हैं, हमारी वजह से भगवान उन नामों से पुकारे जाते हैं। अभी शब्द आया दीनहीन, तो भगवान क्या बने? दीनानाथ, दीनानाथ बने ना। क्यों बने? कि हम दीनहीन हो गए, हम पतित हुए, तो भगवान क्या कहलाए? पतित पावन, एडवांस हो गए। भक्त बने तो भगवान क्या कहलाए? भक्त वत्सल। हम भक्त नहीं बनते तो भगवान भक्त वत्सल नहीं होते, हम दीन नहीं होते तो भगवान दीनानाथ नहीं होते, हम पतित नहीं होते तो भगवान पतित पावन नहीं। अब आखिरी शब्द फिर आता है हरे, माया सहे रमस्व, आपके श्री चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे साथ विशुद्ध क्रीड़ा कीजिए। तो यहां जो है, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का हरि नाम लेते हैं तो एक सिंपल भाषा में बात करते हैं कि हरि का जो अर्थ है, हम कृष्ण नाम नहीं कह रहे, श्याम नाम नहीं कह रहे, जगन्नाथ नाम नहीं कह रहे, जगन निवास नाम नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? हरि नाम। तो इतना सिंपल जो चेंज आया है वो किस, क्या अर्थ है उसका, क्या मीनिंग है? हम जो है जब नाम लेते हैं, इसका मतलब है जो भगवान के नामों का उच्चारण है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ यह है कि हम जो है समझते हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो भगवान का नाम है ये हमारे सब दुखों को हर लेगा। हरि, हरि का अर्थ क्या है? दुखों को हर लेने वाले। इसीलिए भगवान को हरि के नाम से पुकारा जाता है। अब हरि का नाम ले रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है कि ये नाम जो है इसका उच्चारण हमारे सब दुखों को हर लेगा। अब आती है चर्चा नाम संकीर्तन की। एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि सब हमें जो है हरि नाम लेना है तो उसमें काउंटिंग करनी है, काउंटिंग, काउंटिंग क्यों की जाती है? वही लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं जी मेरे तो मन के अंदर हरि नाम चलता ही रहता है, मेरे तो अंदर जो है हरि नाम लगातार रहता है, मेरे तो काउंटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो काउंटिंग क्यों करते हैं? वही जोर से बोलो, जोर से, उनका मतलब आप समझते हैं कि आप समाज में किसी से मिले और वो कहता है जी मैं तो बस भगवान का नाम लेता रहता हूं, लगातार चलता रहता है, तो उच्च कोटि का जीव हो गया, वो सारे पाप करता, सारे दुनिया भर के क्लेश उसके मन में समाये हुए हैं। भगवान के लिए जो आप जो मतलब उंगलियों से माला पे जप करते हो वो अपने मन को यूज नहीं करते, सिर्फ उंगलियों को यूज करते हैं, जीवा को यूज करते हैं, मन को यूज नहीं करते। देखिए तीसरा स्टेप है स्मरण, विष्णु स्मरण। स्मरण कब होता है? आपका कोई मित्र जो है वो आपसे बहुत दिन से नहीं मिला, बहुत दिन से नहीं मिला, आपने उसका नाम पढ़ लिया बाई चांस या उसका नाम सुन लिया तो आपको एकदम उसका स्मरण होता है कि नहीं होता? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रवण करने से स्मरण होता, यही हुआ ना बात। अब आप दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, दो घर के पुरानी आपस में चर्चा कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, सो उसका स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसका मतलब है कि स्मरण करने की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम। और यहां प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि जब आपने कीर्तन करना है अर्थात भगवान के नामों का जप करना है तो इतनी ऊंची आवाज में होना चाहिए कि आपके कानों में सुनाई दे, अर्थात श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ हो रहे हैं। समझे नहीं आप? दोनों कार्य एक साथ एक समान हो रहे हैं, उसमें कोई भेद नहीं आ रहा। अब प्रश्न आता है कि असंख्या पूर्वक जब जप किया जाता है तो उसका उतना फल नहीं मिलता जितना कि संख्या पूर्वक किया जाता है, खास तौर पे जब आप किसी मंत्र को विशेष फल की प्राप्ति के लिए करते। एक बालिका को मॉलिस्ट कर दिया किसी ने, छेड़ दिया, कोई दिक्कत पैदा कर दी पार्टी के अंदर, मेरे साथ इंटरनेट पे अवेलेबल थी तो वो गाइडेंस चाहती थी, काउंसलिंग चाहती थी, तो उसने मेरे से उस दिन मेल किया, मुझसे कहने लगी कि प्रभु जी ऐसा है कि मैंने भगवान के मंदिर में खड़े होके, मेरा ख्याल है 1000 किलोमीटर दूर होगी वो, मैंने वो किया है, मैंने एक प्रण लिया है कि अगर मेरे 1000 माला करने तक उसको पनिशमेंट नहीं मिली तो मैं मंदिर आना छोड़ दूंगी, भगवान के नाम का जप करना छोड़ दूंगी। मतलब आप विशेषता किसी फल की प्राप्ति के लिए जप कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब आप किसी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं तो वो जो है उसके अंदर आपकी काउंटिंग भी हो गई, 1000 माला करनी है, पर्टिकुलरली एक स्पॉट एक जगह हो गई कि मैं यहाँ करूँगी, ऐसे करूँगी, ये समय करूँगी वगैरह वगैरह, सब बातें इन्वॉल्व हो गई। पर मंत्र जब चाहिए निष्काम, अब भगवान के दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं, वो कामना नहीं है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, होनी चाहिए। सकाम का मतलब ये है भौतिक संसार में आनंद लेने की, भोगने के फल की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य। अब जब मंत्र जो है किसी देवता के दर्शन के लिए किया जाता है तो उसमें जो है संख्या की आवश्यकता नहीं होती, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लगातार चल रहा है 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 चल रहा। परंतु एक कंडीशन है कि आपका मन जो है संयत होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। या देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तदा नोच्छिप्यदो निषेधोस्ति श्री हरि नाम लुब्धका। ये हरि भक्ति विलास से है कि हरि नाम महामंत्र है जो दीक्षा देश कालादाई सीमों से परे है। हरि नाम करने से आपको भगवान का प्रेम प्राप्त, क्योंकि आपके दुख जो है कष्ट जो है हर लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेम प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अब आप करते हो काउंटिंग, काउंटिंग अर्थ क्या है? काउंटिंग किस लिए करोगे? व्हाई? कि जब आप काउंटिंग करते हो तो उसका विशेष प्रयोजन ये होता है कि जो आपके नाम अपराध हैं उनका खंडन जो है रेगुलरली होता रहता है, और ये आपने एक व्रत ले लिया। जैसे हम भौतिक संसार में लाभ प्राप्त करने के लिए कहते हैं जी मैं 16 सोमवार व्रत रखूंगा, मैं 40 शुक्रवार व्रत रखूंगा, तो उसका आपको जो है काउंटिंग रहती है और आप उसका फायदा उठाते हो। तो यहाँ पर जो है एक व्रत हो गया कि मैंने 16 माला रोज करनी है, ये आपने एक भगवान के सामने खड़े होके व्रत लिया। तो अगर जो है आप उस संख्या को पूरा करने के लिए मन बना लेते हैं तो आप सांसारिक कामों को छोड़ते हैं, और अगर अपने आप चलता रहता है तो सांसारिक काम हावी हो जाते हैं और मंत्र जो है वो चलना बंद हो जाता है। इसलिए काउंटिंग जरूरी है, क्योंकि आपको सांसारिक काम छोड़ेंगे। अगर काउंटिंग नहीं है तो कभी आधी माला कर ली, कभी एक माला कर ली, कभी मन ही मन कर लिया, पता नहीं कितने हो गए, चलो हो गए होंगे, कर ही ले सवेर से, कहो चल ही रहा, हो ही गए होंगे, चलो कोई बात नहीं। तो जब आप संख्या पूर्वक जप करते हो तो आप एक नियम में आ गए, तो उस नियम को पूरा करने के लिए जो समय है, मान लीजिए 2.5 घंटे लगते हैं, तो 2.5 घंटे आपने संसार से मुक्त होके भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया। एटलीस्ट आप भगवान की तरफ 2.5 घंटे के लिए अट्रैक्ट हो गए हैं, आकर्षित हो गए। अब आती है चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा है, कि उच्च स्वर से कीर्तन करना। आपका मन जो है ना बड़ा चंचल है, और उसमें जो है भगवान की स्मृति रिमेम्बरेंस पूरी तरह जम नहीं पाती, और जब भगवान की स्मृति हो जाएगी तो चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा। अब चित्त को संयत करना जरूरी है। संयत करने के लिए जो वाकेंद्रिय है, जो जो जिह्वा में बोलने की शक्ति है, उसे कंट्रोल करना आवश्यक है। जब नाम संकीर्तन करते हैं, सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, तो वो आपके चित्त को, आपके मन को कंट्रोल करता है, संयम करता है, क्योंकि आप मुख से भी कार्य कर रहे हैं और कान से भी कार्य कर रहे हैं। तो हृदय के अंदर जो है भगवान का स्मरण शुरू हो गया है, उससे आपका मन जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, मन वश में होना शुरू हो जाता है। तो उच्च ध्वनि से जब कीर्तन करते हैं तो वो आपका भी उद्धार करती है और जो सुनते हैं उनका भी उद्धार होता है, दोनों का उद्धार होता है। अब इस उद्धार के अंदर चर्चा ये आई कि हरिदास ठाकुर जो है बड़े ऊंचे स्वर में कीर्तन किया करते, स्तंभ माला में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि हरे कृष्णात उच्चै स्वरति सना। श्रीमन महाप्रभु ने एक दिन हरिदास ठाकुर से पूछा, बड़ा सुंदर प्रसंग है, पृथ्वी ते बहुजीव स्थावर जंगम ही सा बार ही प्रकारे इवे मोचन। कि हरिदास, पृथ्वी पर तो असंख्य जीव है, असंख्य जीव, उनमें जो पशु पक्षी आदि जंगम जीव हैं और जो वृक्ष आदि स्थावर जीव हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? भाई मनुष्यों ने तो हरि नाम कर लिया, सारे नहीं करते, बात अलग है, पर ऑप्शन तो है ना कि कर सकते हैं, पर ये जो जीव हैं ये हरि नाम कैसे करेंगे? तो हरिदास जी ने क्या उत्तर दिया, बहुत लंबे बयान है ना चर्चा करके, सिर्फ उसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। कहते हैं कि आपने जो उच्च स्वर में नाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां तो करते ही हैं, और फिर क्या करते हैं, सड़कों पे हरि नाम लेके निकल जाते हैं। कि जो जीव हैं, जो मनुष्य नहीं है, दूसरी कोटि के जीव हैं, उनको यहां तो जो आसपास उपस्थित है हमको देख नहीं रहे हैं, उनको तो लाभ प्राप्त होगा ही, परंतु जो पहाड़ भी हैं उनको भी हम लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर जाते हैं कि जब हरि नाम सुनते हैं तो पशु पक्षी सबका जो है संसार बंधन छूटने का चांस रहता है। पर प्रश्न आया कि जो वृक्ष हैं, जो स्थावर हैं, जंगम नहीं है, उनका क्या होगा, वृक्षों का क्या होगा, उनका रिस्पॉन्स क्या है? तो हरिदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं कि आपकी कृपा से जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनको भी हरि नाम का लाभ प्राप्त होता है, वो भी कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। तो कैसे करते हैं? बोले कि एक शब्द हमारे साइंस में इस्तेमाल होता है, इको। इको का अर्थ क्या है? हम जब पहाड़ों में जाते हैं तो हम बोलते हैं तो हमें वैसी आवाज दोबारा से सुनाई देती है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब जगत में उच्च स्वर से कीर्तन होता है तो उससे जो है स्थावर जंगम समस्त जीव प्रेम के आविष्ट होकर नाचते हैं। तो ये जो वृक्ष हैं, इनकी जो इको हमें आ रही है, इको नहीं है, वो उच्च नाम की ध्वनि जब वृक्षों से टकराती है तो वृक्ष कीर्तन करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है। इतनी उच्च कोटि की बात कही है कि उसको हम जो है अपनी ही आवाज का प्रतिध्वनि अगर प्रतिबिंब समझते हैं, प्रतिध्वनि समझते हैं, तो वो उन्होंने हमारी ही आवाज को जो है लौटा दिया है कीर्तन के माध्यम से। हरि नाम तो पूरा सप्ताह चलेगा, दो दो सप्ताह का टाइम है इस बार, टू वीक्स है ना, दो सप्ताह की बात है। अभी मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं आज स्पेशल। अभी हमने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की बात करी, उनके आदेश का पालन कहा ना। मैं आपको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश का एक अंश सुनाना चाहता हूं और उसको कैसे भगवान पूर्ण करते हैं इसको भी बताना चाहता हूं। डेढ़ महीना पहले गुरु महाराज ने मुझको बुलाया पर्टिकुलर एरिया में कि यहां प्रचार करना है, जोर शोर से प्रचार करना, और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, श्री कृष्ण हरि आएंगे और यहाँ पर जो है प्रचार में सहायता करेंगे और खूब जोर शोर से प्रचार होगा। ये बात है महाराज के रशिया जाने से पहले की, उन्होंने ये अनाउंस किया और हमने स्वीकार कर लिया, यस डन। पर वो देखिए घटना क्या होती है, घटना ये होती है कि 13 जुलाई आज से 20-25 दिन पहले की बात है, मेरा तबीयत कुछ खराब था, पेट खराब था, तो मैं अपने हॉस्पिटल में शाम को मरीज देखने के लिए नहीं आया। मैं ऊपर घर में लेटा हुआ था काम से, तो नर्स का फोन आता है कि आप मरीज देखेंगे? मैंने कहा हाँ जरूर देखूंगा, कोशिश करूंगा। मैं उठा और नीचे आ गया। जब सीढ़ी तक पहुंचा तो मेरे को लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं नीचे उतर नहीं पाऊंगा, तो मैं दूसरी सीढ़ी पे बैठ गया। बैठने के बाद मुझे लगा कि मैं अब भी चल नहीं पाऊंगा, मुझे लेटना चाहिए, बैठने से भी काम नहीं चल रहा है, तो मैं दोबारा जाके अंदर लेट गया। 7-8 मिनट के बाद थोड़ा ठीक फील हुआ तो मैं आराम से नीचे उतर आया, दो मरीज देखे, एक बच्चे को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मैंने सिस्टर से एक गिलास पानी का मंगवाया, ऊपर से पानी आ गया, पानी पिया, बहुत भयंकर पेट में दर्द हुई। मुझे लगा कि जो दिन भर से थोड़ी दो बजे ढाई बजे दोपहर से प्रॉब्लम थी, पेट दर्द था, मैं इंजेक्शन अवॉइड कर रहा था, तो मुझे इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो मैंने अपने थोड़ा पैर आगे बढ़ाया और बगल में बेल लगी हुई थी, बेल बजा दी कि स्टाफ आएगा, मुझे इंजेक्शन लगा देना। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ, बेल का आवाज सुन के नर्स अंदर आई, उसने देखा चेहरा हल्दी की तरह पीला है, मुंह खुल गया है, आंखें बंद हो गई, फट गई है एकदम, सांस नहीं है, धड़कन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, नब्ज नहीं है, कुछ नहीं है। एंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्राई करना शुरू कर दिया। दूसरी नर्स भागी आई, कंपाउंडर भागा आया, पेशेंट भागे आए, स्टाफ भागा आया, और ये डिक्लेयर हो गया कि डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, आई एम डेड। अब कोई अनजान आदमी कहे तो बात समझ में आती है, जब स्टाफ कह रहा है जो ट्रेंड है 20-20 साल से काम कर रहा है मेरे साथ, वो कह रहा मुझे कुछ नहीं मालूम है, आई गॉट नो नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग, कौन आया है कौन नहीं आया है, कमरे में कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है, कैसे लोग, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सारे पेशेंट्स इकट्ठे हो गए, एंड इट वॉज ए एब्सोल्यूट सिचुएशन जिसमें कि डॉक्टर गोसाई का तिरोभाव हो गया, ही इज डेड। दो मिनट के बाद, डेढ़ मिनट हुआ है, दो मिनट हो गए, भाई भाई डॉक्टर हैं वो भी ऊपर से आ गए, उन्होंने भी कहा ठीक है भाई मुश्किल हो गया, लेटाओ देखते हैं शायद अलॉट आए वापस आ जाए, सब सेटल हो जाए। तो डेढ़ मिनट के बाद जो है मुझे एक हिचकी आती है, हिचकी आने के बाद ये लोग क्या देखते हैं कि लाली जो है मेरी गर्दन से उठती हुई चेहरे की तरफ आ रही है, ऊपर हल्का हल्का चेहरा पीलेपन से लाली पे आता जा रहा है, एंड फेस बिकम्स रेड, हाथ भी लाल हो गए, आंखें झपकनी शुरू हो गई, धड़कन लौट आई, सांस लौट आया, और ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, और मुझे होश आ गई, होश आ गई। तो इस डेढ़ मिनट के अंदर या दो मिनट के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस था, इसे साइंस कहती है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मेरा क्या एक्सपीरियंस है कि जैसे ही मैं पानी पीने के बाद, बेल लगाने के बाद मैं बेहोश हुआ हूँ, तो मैं आकाश में उड़ता हुआ जा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग इन एयर, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ ऊपर, एंड अल्टीमेटली मैं क्या देखता हूँ कि बादल पार हो गए। बादल पार होने के बाद आकाश आ गया है। अब हो सकता है आकाश पार करना हो, कहाँ जाना हो पता नहीं, आंखें मेरी खुली हुई हैं, और जैसे सीधा ऐसे ऊपर उठता चला जा रहा हूँ, जैसे कि आपको लिफ्ट लगा दी हो और मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, बहुत स्पीड है, विद स्पीड। सडनली एक हाथ अपीयर होता है आकाश के हाइट से, बड़ा सुंदर कोमल गोल्डन हैंड, ब्रेसलेट पहने हुए हैं, हीरे मोती जवाहरात के गहने हैं, और हाथ में ऐसे रोक दिया मेरे को, अभी मतलब कह रहा तो नहीं, बोले तो नहीं, परंतु इशारा क्या है कि इससे ऊपर नहीं, और मैं उसी स्पीड से नीचे गिरना शुरू हो जाता। और मेरी जो वो डेढ़ मिनट की मेमोरी है, डेढ़ दो मिनट की जो मेमोरी है, उसमें मुझे फील होता है कि जैसे ही मैंने धरती को टच किया है मुझे होश आ गया। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनका कनेक्शन जो है वो भगवान से इतना स्ट्रांग है कि उनकी डिजायर को भगवान भी मना नहीं कर सकते। यू हैव टू गो बैक क्योंकि तुम्हारा काम अभी अधूरा है। तो दिस इज कि हमें स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर न तो डाउट करना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु इफ बट कुछ नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर उन्होंने आदेश दिया है और मैंने आदेश की पूर्ति करने के लिए अपना मन बना लिया है, तो कृष्ण भी जो है उनके आदेश को ना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। भगवान ये घोषणा स्वयं भी तो कर सकते थे, आप ही तो बोल रहे हो भाई, आप ही तो अर्जुन को उपदेश दे रहे हो, पर घोषणा किससे करवा रहे हो, अपने भक्त से, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप में कोई घोषणा करके पलट सकता हूँ, और भक्त का जो मान है, भक्त की जो आवाज़ है, भक्त की जो डिज़ायर है, उसको मैं अवश्य पूरा करता हूँ हर हालत में। तो मैं फील करता हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ माई गुरु महाराज कि मेरे को जीवन वापस मिला है। हम थैंकफुल तो हैं। हरे कृष्णा, आप सबका धन्यवाद। आज इतना ही, शेष फिर श्री प्रभुपाद की।